चंद्राश्मद्भागवतम केयर निताय गौर हरि प्रेमानंदे ओम नमः भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमः भगवते वासुदेवाय। तो आज हम लोग पढ़ेंगे भागवत महापुराण से दशम स्कंध। अध्याय 3। इस अध्याय का नाम है कृष्ण जन्म। श्लोक संख्या 7 और 8। मुमुचु मुनयो देवा सुमनांसि मुदान्विता मंद मंद जलधरा जगर्जुरनुसागरं निशिते तद् उत्तम उद्भूते जाये निशिते तम उद्भूते जायमाने जनार्दने देवक्या देवरूपिण्या विष्णु सर्वगुहाशय आविरासिद यथा प्राच्याम दिशि इंदुरिव पुष्कल मुमुचो मुनयो देवा दे सुमनांसि मुदान्विता मंदम मंदम जलधरा जगर्जुर्नुसागरम निशिते तम उद्भूते जायमाने जनार्दने देवक्या देवरूपिण्या विष्णु सर्वगुहाशय आविरासिद यथा प्राच्या दिशिन इंदुरिव पुष्कलम। रुके रुके, सीनियर लोगों को पढ़ लेने दीजिए। एक भक्त एक श्लोक, दो श्लोक है ना, तो एक पढ़िए।
Yeah.
माता जी लोग मुमुचु बरसाया गिराया। Somebody to translate for Jagat Purush Prabhu। मुनयः मुनयों ने, देवा तथा देवताओं ने, सुमनांसी सुंदर तथा सुगंधित फूल, मुदान्विता प्रसन्न चित्त होकर, मंदम मंदम धीरे धीरे जलधारा जल को धारण करने वाले बादल जगरजू गरजने लगे, मंद गति से गरजने लगे। गरजू मतलब गरजना होता है, जगरजू मतलब मंद गति से। अनुसागरम समुद्र की लहरों की ध्वनि के साथ, निशिथे अर्धरात्रि में, तम उद्भूते घना अंधकार होने पर, जायमाने प्रकट होने पर, जनार्दने भगवान विष्णु के, देवक्या देवकी के गर्भ में, देवरूपिण्या भगवान के रूप में, आनंद चिन्मय रस प्रतिभाविता भी विष्णु भगवान विष्णु, सर्वगुहाशय हर एक के हृदय में स्थित, आविरासित प्रकट हुए यथा जिस प्रकार, प्राच्यम दिशि पूर्व दिशा में, इंदु इव पूर्ण चंद्रमा के समान, पुष्कलह सब प्रकार से पूर्ण। अनुवाद तात्पर्य भक्तिविदान स्वामी श्रील प्रभुपाद के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। देवताओं तथा महान साधु पुरुषों ने प्रसन्न होकर फूलों की वर्षा की और आकाश में बादल उमड़ आए तथा मंद स्वर से गर्जन करने लगे, मानो समुद्र की लहरों की ध्वनि हो। तब हर हृदय में स्थित पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान विष्णु रात्रि के गहन अंधकार में देवकी के हृदय से उसी तरह प्रकट हुए जिस तरह पूर्वी क्षितिज में पूर्ण चंद्रमा उदय हुआ हो, क्योंकि देवकी श्री कृष्ण की ही कोटि की थी। तात्पर्य, जैसा कि ब्रह्म संहिता में कहा गया है, आनंद चिन्मय रस प्रतिभाविता भी ताभीर एव निज रूपतया कला भी
गोलोक एव निवसित अखिलात्मभूतो गोविंदमादि पुरुषां तमां भजामि।
इस श्लोक से पता चलता है कि कृष्ण तथा उनके परिकर एक ही आध्यात्मिक शक्ति आनंद चिन्मय रस के होते हैं। कृष्ण के पिता, उनकी माता, उनके गोप मित्र तथा गाय सभी कृष्ण के अंश हैं, जैसा कि ब्रह्म विमोहन लीला में बताया जाएगा। जब ब्रह्मा ने भगवान कृष्ण की सर्वश्रेष्ठता की परीक्षा करने के लिए कृष्ण के संगियों का हरण कर लिया तो भगवान ने अनेक ग्वालों तथा बछड़ों के रूप में अपना पुनः विस्तार कर लिया और ब्रह्मा ने देखा कि ये सभी विष्णु मूर्तियां हैं, देवकी भी कृष्ण की अंश है। इसलिए इस श्लोक में कहा गया है देवक्या देवरूपिण्या विष्णु सर्वगुहाशय। भगवान के आविर्भाव के समय सारे मुनि तथा देवता प्रसन्न होकर फूलों की वर्षा करने लगे। समुद्र तट पर मंद लहरों की ध्वनि हो रही थी और समुद्र के ऊपर आकाश में बादल थे जो अत्यंत मनोहारी गर्जना करने लगे। जब इस तरह का वातावरण बन गया तो प्रत्येक जीव के हृदय में निवास करने वाले भगवान विष्णु अंधेरी रात में देवी स्वरूपा देवकी के समक्ष प्रकट हुए। उस समय भगवान विष्णु के प्राकट्य की उपमा पूर्वी अंतरिक्ष के पूर्ण चंद्रमा के उदय होने से दी जाती है। यहाँ पर आक्षेप किया जा सकता है कि कृष्ण तो कृष्ण पक्ष के अष्टमी के दिन उत्पन्न हुए तो फिर पूर्ण चंद्रोदय कैसे हुआ? इसका उत्तर यह हुआ कि कृष्ण चंद्र वंश में उत्पन्न हुए थे, अतः भले ही उस रात चंद्रमा अपूर्ण रहा हो किंतु भगवान जिस कुल में प्रकट हुए उसमें चंद्रमा साक्षात आदि पुरुष हैं, अतः चंद्रमा अत्यधिक प्रसन्न थे और कृष्ण कृपा से वह पूर्ण रूप से प्रकट हो सके। भगवान का स्वागत करने के लिए कृष्ण पक्ष का चांद हर्ष के मारे पूर्ण चंद्रमा बन गए। श्रीमद् भागवत के अनेक पाठों में देवरूपिण्या शब्द के स्थान पर विष्णु रूपिण्या पाठ मिलता है। प्रत्येक दशा में अर्थ यही है कि देवकी का स्वरूप भगवान के ही सदृश आध्यात्मिक है। भगवान सच्चिदानंद विग्रह हैं और देवकी भी वही है। अतः जिस विधि से सच्चिदानंद विग्रह भगवान देवकी के गर्भ से प्रकट हुए उसके विषय में कोई त्रुटि नहीं निकाली जा सकती। जिसे यह पूरी तरह समझ नहीं है कि भगवान का प्राकट तथा त्रियोधान दिव्य होते हैं, जन्म कर्म चमे दिव्यम, वे कभी कभी आश्चर्यचकित रह जाते हैं कि भगवान समान बालक की तरह जन्म ले सकते हैं, किंतु वास्तविकता यही है कि भगवान का जन्म कभी भी सामान्य नहीं होता। भगवान पहले से हर प्राणी के हृदय में अंतर्जामी परमात्मा के रूप में स्थित हैं, अतः देवकी के हृदय में संपूर्ण शक्ति के साथ उपस्थित रहने से वे उनके शरीर के बाहर भी प्रकट होने में समर्थ थे। 12 महाजनों में भीष्म देव भी एक हैं। स्वयंभू नारद शंभु कुमार कपिलो मनु प्रहलादो जनको भीष्म। श्रीमद् भागवतम 1.9.42 में भीष्म जो भक्तों द्वारा अनुसरणीय है कहते हैं कि भगवान हर व्यक्ति के हृदय में उसी प्रकार स्थित हैं जिस प्रकार हर व्यक्ति के सिर के ऊपर सूर्य रहता है। भले ही सूर्य करोड़ों व्यक्तियों के सिर के ऊपर हो किंतु इसका अर्थ यह नहीं है कि सूर्य अलग अलग स्थित हैं। इसी तरह अचिंत शक्तियों के कारण भगवान भले ही हर एक के हृदय में स्थित हों किंतु वे अलग अलग नहीं है। एकत्वम अनुपस्थितः ईशोपनिषद 7। भगवान एक हैं किंतु वे अपनी अचिंत शक्ति के द्वारा हर प्राणी के हृदय में प्रकट हो सकते हैं। इस तरह भगवान देव के हृदय में रहते हुए भी उनके पुत्र के रूप में प्रकट हुए। इसलिए विष्णु पुराण के अनुसार जैसा कि वैष्णव तोषणी में उद्धृत किया है भगवान सूर्य के समान प्रकट हुए। अनुग्रहाशय ब्रह्म संहिता 5:35 पुष्टि करती है कि भगवान प्रत्येक परमाणु के भीतर स्थित हैं। अंदांतरस्थ परमाणु चयांतरस्थम वे मथुरा में वैकुंठ में तथा हृदय में स्थित हैं। अतः हमें स्पष्ट समझ लेना होगा कि वे देवकी के हृदय या गर्भ में सामान्य बालक की तरह नहीं रहे थे, न ही वे सामान्य मानवीय सृष्टि की तरह उत्पन्न हुए। यद्यपि कंस जैसे असुरों को मोहित करने के लिए ऐसा करते हुए प्रतीत हुए। असुरगण व्यर्थ ही सोचते हैं कि कृष्ण ने सामान्य बालक की तरह जन्म लिया और सामान्य व्यक्ति की भांति इस संसार से चले गए। भगवत ज्ञानी व्यक्ति ऐसी आसुरी धारणाओं का खंडन करते हैं। अजो अपि सन्नव्यात्मा भूतानाम ईश्वरोपि सन्। भगवत गीता 4:6। भगवान अज अर्थात अजन्मा है और सबके परम नियंता है, फिर भी वे देवकी के पुत्र के रूप में प्रकट हुए। इस श्लोक में पूर्ण चंद्र स्वरूप प्रकट होने वाले भगवान की अचिंत शक्ति का वर्णन हुआ है। भगवान के आविर्भाव की विशिष्ट महत्ता को समझते हुए भगवान को कभी भी सामान्य बालक की तरह जन्म लेते नहीं मानना चाहिए। ओम अज्ञानतिमिरांधस्य ज्ञानञ्जनशलाकय चक्षुर्जनिमीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो ये जो भागवतम का ये प्रथम प्रकरण है जिसे जन्म प्रकरण कहा जाता है, और इस जन्म प्रकरण में 4 अध्याय है। चारों अध्यायों में 4 विषय वस्तु का निरूपण किया गया है। प्रथम अध्याय में हेतु का निरूपण किया गया है कि भगवान इस धराधाम पर आए कारण क्या था, किस कारण से भगवान आए, तो उस हेतु का वर्णन किया गया है। जो दूसरा अध्याय है उसमें उद्यम का, भगवान अब आ रहे हैं तो जो व्यवस्था भगवान किए, जोग माया को आदेश दिए कि आपको ये करना है ये करना है, सब व्यवस्था किए, फिर देवताओं के द्वारा पूजित होकर के भगवान आविर्भूत हुए। यह जो तीसरा अध्याय है इस अध्याय का नाम है रूपांतरण या स्वीकरणम। भगवान यहाँ पर रूपांतरित हुए हैं, और जो चतुर्भुज रूप में आए थे और उसके बाद में वे द्विभुज रूप में अंतर हुआ, रूपांतरित हुए। और अंतिम अध्याय जो है इसके आगे वाला 4th अध्याय है वह है कापट्यम। भगवान ने कपट किया, जन्म लिए मथुरा लेकिन पहुंच गए कहाँ, जोर से बोलो, खाई नहीं हो, गोकुल पहुंच गए। तो गोकुल जाने के लिए भगवान ने जो कपट किया उसका वर्णन 4th अध्याय में है। अब यह 3रा अध्याय है, इस 3रा अध्याय में 6 विषय वस्तुओं का वर्णन किया गया है, उस पर ध्यान देना चाहिए। इस अध्याय का नाम क्या है, आए? अरे जो मैं बताया उसके अनुसार बताओ ना, रूपांतरण, इसका नाम है रूपांतरण। कृष्ण का जन्म तो हुआ ओवरऑल, लेकिन इस अध्याय को, इस प्रकरण को रूपांतरण या स्वीकरणम प्रकरण कहा गया है। इसमें छह विभाग है, जननम वर्णनम शस्त्रोत्रम सांत्वने गमनम तथा षड्विधो भगवान अत्रह तृतीय निरूप्यते। ये तीसरे अध्याय में छह चीजों का वर्णन किया गया है। प्रथम है जननम, भगवान के जन्म का वर्णन किया गया है। दूसरा विभाग है वर्णनम, भगवान कैसे हैं, भगवान का स्वरूप कैसा है, उसका वर्णन किया गया है। तो श्लोक एक से लेकर के श्लोक आठ के बीच में भगवान के जन्म का वर्णन किया गया है। तो ये अंतिम श्लोक है जिसमें भगवान के जन्म का वर्णन किया गया है। कल से भगवान के भगवान का वर्णन किया जाएगा। तद अद्भुतम बालम अम्बुज क्षणम चतुर्भुजम शंख गदा गदा पद्मजाधम श्रीवत्सलक्षम गलस विकस्तम पीताम्बरम सांद्र पयोह सौभगम। तो भगवान का वर्णन किया गया है, तो वह है वर्णनम। चार श्लोकों में उसका वर्णन किया गया है भगवान का। उसके बाद है अस्तोत्रम, यह 18 श्लोकों में भगवान की स्तुति की गई है, जिसमें से 10 श्लोकों में वसुदेव स्तुति किए हैं और 8 श्लोक में उनकी माता देवकी ने स्तुति किया है। तो इस प्रकार से 18 श्लोक। जब ये लोग स्तुति कर लिए तो ये चार हुआ, जन्म वर्णनम स्तुति, दो प्रकार का है, वसुदेव का स्तुति और देवकी के द्वारा, तो चार हो गया। पांचवा है संतावनम, भगवान संतावना दिए देवकी और वसुदेव को कि आप लोग चिंता मत करो, मैं आ गया हूं, अरे मेरे लिए आप लोगों ने बहुत कुछ किया है। पूरा भगवान बताएं कैसे आप लोग पहले पिशनी गर्भ थे और सुतपा थे, आपने तपस्या किया, फिर मैं आया, और इत्यादि इत्यादि पूरा बात भगवान बताए, पूर्व जन्म का बात बताए। इस प्रकार से संतावना दिए, और संतावना देने के बाद भगवान कहते हैं अपना काम मैं शुरू कर रहा हूं, तो वह है गमनम। तो 8 श्लोकों में भगवान के गमन का वर्णन किया हुआ है, जब भगवान रूपांतरण कर लिए उसके बाद गमन किए। षड्विधो भगवान अत्र तृतीय निरूप्यते, इस प्रकार से 6 वस्तुओं का वर्णन किया गया है। ये 6 वस्तुएं जो हैं ये भगवान के 6 ऐश्वर्यों के घोतक हैं। षड्विधो भगवान अत्र तृतीय निरूप्यते, इस तीसरे अध्याय में भगवान के 6 ऐश्वर्यों का वर्णन किया गया है। चलिए भगवान के ऐश्वर्यों को हम ढूंढते हैं इन 6 वस्तुओं में, ठीक है। तो सब लोगों को इसमें भाग लेना पड़ेगा, मैं नहीं बोलूंगा, ठीक है ना। अब जन्म, जन्म में भगवान का कौन ऐश्वर्य है, अभी आप लोग 8 श्लोक सुने हैं ना, तो इन 8 श्लोकों में से जो जन्म है उसमें कौन सा ऐश्वर्य दिखाई पड़ता है। विष्णु, विष्णु बोलता है, बलदेव बताएगा। भगवान के जस का वर्णन किया गया है इन प्रथम विभाग में, जनन में। जो वर्णन है उसमें भगवान के स्वर्ग का वर्णन किया गया है, भगवान के ऑपुलेंस का वर्णन किया गया है। उसके बाद अस्तोत्रम जो दोनों है उसको आप लोग आगे पढ़ेंगे तो उसके भगवान के धन और बल का वर्णन किया गया है, और संतावना में भगवान के ज्ञान का वर्णन किया गया है, और गमनम में भगवान के वैराग्य का वर्णन किया गया है। बच्चा जन्म लिया कहता है मुझे ले चलो यहाँ से, तो भगवान वैरागी है, तो भगवान के वैराग का वर्णन किया गया है। इस प्रकार से षड्विधो भगवान अत्र तृतीय निरूप्यते, छह प्रकार से भगवान का यहाँ पर निरूपण किया गया है। तो अब तक से छह श्लोकों में भगवान के जन्म का वर्णन किया गया है, भगवान का जस का वर्णन किया गया है कि किस प्रकार से। इसके पहले देवता लोग भगवान का गुणवाद किए, भगवान का जो गुणानुवाद किए देवता लोग का, अब गुणानुवाद समाप्त हो चुका है, देवता लोग अपना काम कर चुके हैं। देखिए भगवान जब आविर्भूत हुए उस समय सब लोग प्रसन्न थे, सब लोग प्रसन्न थे, जिसका वर्णन यहाँ पर ये छह श्लोकों में किया गया है। अतः सर्वगुणापेते कालम परम शोभनम, कालम परम शोभनम, भगवान कालातीत हैं, काल से परे हैं, लेकिन इस बार भगवान काल को भी प्रसन्न करने के लिए भगवान काल में अवतरित हुए। अष्टमी के दिन एक काल है, भगवान कालातीत हैं फिर भी काल में अवतरित हुए, जिससे काल बड़ा परम शोभनम, बहुत आनंदित हुए काल। उसी प्रकार से नक्षत्र तारे नदियां जलाशय अग्नि वायु दस विषय वस्तुओं का वर्णन किया गया है इन छह श्लोकों में। तो चलिए उसके बाद अब देवताओं से पहले देवता लोग भी प्रसन्न थे, उसके बाद किन्नर गंधर्व सिद्ध चारण विद्याधर ये सब के सब प्रमोदित होकर के आनंदित होकर के ये लोग अब भगवान का अगवानी कर रहे हैं। अब जो ये पार्टिकुलर श्लोक है श्लोक सात और आठ, इस पर हम लोग विचार करेंगे। शुरू हो रहा है मुमुचो मुनयो देवा सुमनांसी मुदान्वित, मुदान्वित प्रसन्न चित हैं। कौन कौन? यहां पर दो लोगों का वर्णन किया गया है, मुनि और देवतागण। साधु स्वभाव वाले जो लोग हैं, भक्त जन जो लोग हैं, वे लोग प्रसन्न हुए। मुदान्विता मुनयः देवा सुमांसी मुमुचु जलधर मंद मंद अनुसागरम जगर्जुः, जयमाने जनार्दने निशिते तम उद्भूते प्राच्यादिशि यथा पुष्कलम इंदु इव देवक्या देवरूपिण्या सर्वग्वासय विष्णु आविरास्त। मुदान्वितः प्रसन्न चित हैं। कोई प्रसन्न कब होता है? प्रसन्नता का कारण हम स्वयं नहीं हैं, कोई वस्तु हमको प्रसन्न करता है, यही बात है ना। भूख खूब लगा हो और फर्स्ट क्लास का प्रसादम हो तो हम लोग प्रसन्न हो जाते हैं। प्रसन्नता का कारण क्या हुआ? प्रसाद हुआ। खूब फर्स्ट क्लास कीर्तन हो रहा हो और हम बड़े खुश हैं, आनंद हैं, आनंद का कारण क्या है? कीर्तन। तो कोई वस्तु होनी चाहिए हमारी प्रसन्नता के लिए, हम अपने आप प्रसन्न नहीं हो सकते हैं, कोई वस्तु होनी चाहिए। अब वो वस्तु क्या है वही ढूंढना है। ये कृष्ण कॉन्शियसनेस मोमेंट का स्थापना उसी वस्तु को ढूंढने के लिए दिया गया है। स्कान उस वस्तु को ढूंढने के लिए दिया गया है, बनाया गया है, जिससे हम लोग प्रसन्न हों। हम सब प्रसन्न होना चाहते हैं। यहां पर देवता और मुनि लोग प्रसन्न हैं, कारण क्या है? हैं? भगवान आए हुए हैं, ठीक है ना, भगवान का आविर्भाव हुआ है तो कारण है भगवान। तो मुदान्विता मुनयः देवा, मुनि लोग और देवता लोग। देवता लोग तो भगवान को पहले प्रणाम किए हैं विभिन्न प्रकार से। अब जब भगवान माँ के गर्भ, भगवान जब गर्भ में थे उस समय प्रणाम किए, अब भगवान का आविर्भाव हुआ है तो प्रसन्न होकर के वे लोग अपना सब कुछ न्योछावर कर रहे हैं। यही है भक्ति। हमारे पास अपना तो कुछ है नहीं, सब भगवान का दिया हुआ। ईशावास इदम सर्वम, सब कुछ के मालिक भगवान हैं। इसलिए सब कुछ भगवान को अर्पण करना यह भक्ति कहलाता है। भगवान गीता में यही कहते हैं, यद करोषि यदस्नासि यज्जोषि दास्यत् यत् तपस्वसि कौन्तेय तत्कुरु समदर्पणम्। सब कुछ मुझे दो, सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणमय, सब मुझे दो। यही है भक्ति। अब यहां पर देखते हैं कि देवता और मुनि अपना भक्ति कर रहे हैं। मुनियों में वाणी शक्ति है। मुनि लोग भगवान का गुणानुवाद कर सकते हैं और देवताओं में अर्थ शक्ति है, उनके पास धन है। तो यहां पर सुमनांसी, यहां पर पुष्पांसी नहीं कहा गया है, पुष्प का वर्षा किए यह बात नहीं है, यहां पर सुमनांसी शब्द कहा गया है। बहुवचन सुमन का मतलब होता है फूल, और सुमन का दूसरा मतलब क्या होता है, क्या? अच्छा मन, सुमन अच्छा मन। तो एक शब्द दोनों के लिए अप्लाई है। यदि पुष्पांशी कहा जाता तो देवताओं के लिए ठीक था, ऊपर से वर्षा कर रहे थे ना, मुनि लोग ऊपर नहीं थे, वो तो नीचे थे ना, तो मुनि लोग कैसे जाते, इतना बड़ा कारागार था, कैसे जा सकते थे जल, यू नो, कंस के कारागार में, वो तो वॉचमैन को रोक देते बाहर ही, ऐसे भी सो गए थे तो कोई बात नहीं, मुनि जा भी सकते थे लेकिन गए नहीं थे वहां पर। तो यहां पर व्यासदेव सुमनांसी शब्द, सुखदेव गोस्वामी सुमनांसी शब्द का यूज किए हैं। दोनों के लिए जो सार्थक है, देवताओं के लिए भी सार्थक है और मुनियों के लिए भी सार्थी है। मुनयो देवा सुमनांसी मुदान्वित, प्रसन्नता के कारण थे भगवान और प्रसन्न होकर के वे लोग क्या कर रहे हैं, अर्पित कर रहे हैं। क्या अर्पित कर रहे हैं? अपना धन। मुनियों का धर्म है, साधुओं का धर्म है या धन है भगवत गुणानुवाद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। जारे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश, जैसा कि महाप्रभु ने कहा है। यही हम लोगों का धर्म है, यही हम लोगों का धन है, और वह है प्रचार करना। जाकर के लोगों को में बांटो, नामे रति जीवे दया वैष्णव सेवन, यहां छाड़ी धर्म नाय सुनो सनातन। नाम में प्रेम हो, जीवों के प्रति दया हो और वैष्णवों की सेवा करने की भावना हो, यही हम लोगों का धन है। ये हमारा ऑपुलेंस है, भगवान ने हमको ये दिया है, तो इस काम में कमी नहीं रखनी चाहिए। जिसको भैया खुश रहना है हमेशा, जिसको वो मुदान्विता रहना है, जिसको खुश रहना है, कंजूसी मत करना प्रचार करने में, ठीक है ना, देने में कंजूसी मत करना, देने से हमेशा खुश रहोगे। हमारे पास है ही क्या, वाणी है, वाणी सेवा करो, वाणी से भगवान का सेवा कर सकते हैं, जैसे महाराज अमरीश कर रहे थे। भगवान का गुणानुवाद कर रहे थे वाणी से, तो वाणी की सार्थकता है भगवान के गुणानुवाद में, ऐसे मुनि कर रहे हैं, मुनि लोग कर रहे हैं और इसलिए वे प्रसन्न हैं। देवताओं के पास धन है तो वे धन से भगवान का सेवा कर रहे हैं, कैसे, पुष्प का वर्षा कर करके। भगवान की सेवा में फूल खरीदने में तकलीफ नहीं करनी चाहिए, अच्छा अच्छा फूल लाना चाहिए, भगवान का ही है, हैं? भगवान बड़े प्रसन्न होते हैं फूल से। वृंदावन में फूल थोड़ा कम होता है तो भगवान जो भी मिलता है मोर का पंख भी लगा लेते, सब लगा लेते हैं, भगवान को श्रृंगार करना अच्छा लगता है, तो फूल से भगवान का अच्छा श्रृंगार होना चाहिए। तो देवता लोग भगवान के ऊपर पुष्प का वृष्टि कर रहे हैं। तो सुमनांसी का अर्थ मन गए ना, वो कैसे भगवान का सेवा करने के लिए हम लोगों को सुमनांसी बनना पड़ेगा, यानी मन को शुद्ध करना पड़ेगा, एक अर्थ यह है। दूसरा अर्थ है कि भगवान का सेवा करने से मन सुमन हो जाता है। चेतो दर्पण मार्जनम भो महादवाग्नि निर्वापणम श्रेय कैरव चंद्रिका वितरणम विद्या वधु जीवनम आनंदाम्बुदि वर्धनम प्रतिपदम प्रणामित स्वादनम सर्वात्म सपनम परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तन। आनंदाम्बुदि वर्धनम, और यहां पर आए मुदान्विता, आनंद की वृद्धि होती है, और यहां पर आया हुआ है कि प्रसन्न चित होते हैं। जब चित्त शुद्ध हो जाता है, सुमन हो जाता है, मन सुमन हो जाता है, तो यहां पर साधुओं का, साधु पुरुषों का, संतों का, मुनियों का और देवताओं का वर्णन किया। प्रश्न उठता है कि देवता लोग तो पहले प्रार्थना कर ही चुके थे, पहले तो वाणी से किए थे, अब वे लोग कुछ अर्पण करना चाहते हैं। जब भी कोई बड़ा व्यक्ति आता है तो उसे कुछ देना चाहिए, कुछ अर्पण करना चाहिए। और जब जन्म कोई बच्चा होता है तो जन्म लेता तो लोग जाते हैं तो कुछ लेकर जाते हैं, तो भगवान का जन्म हुआ है, देवता लोग आए हैं, तो भगवान को अर्पण कर रहे हैं। क्या अर्पण कर रहे हैं? सुमनांसी, विभिन्न प्रकार का फूल, एक ही नहीं गेंदा का फूल ला दिए, नहीं, सुमनांसी बहुवचन है, चंपा चमेली। हम लोग कहेंगे प्रभु जी आजकल ये वो सब फूल नहीं मिलता है आजकल, लेकिन देवता लोग वो फूल भी तैयार हो गए, ऑफ सीजन के फूल थे वो भी उस सीजन में आ गए। यहां सब कुछ काल बदल गया है ना, सब उल्टा हो गया है। आप लोग पीछे सुने होंगे कि जलाशय बिल्कुल स्वच्छ हो गए थे, अब देखो जब बरसात का समय होता है उस समय सब कुछ धूल दूषित होता है, धूल से। गंगा जी का पानी देखो धूल दूषित है, धूल के समान। तालाब का पानी देखो धूल के समान है, लेकिन यहां वर्णन किया गया है स्वच्छ थे, बिल्कुल निर्मल निर्मल थे जलाशय, उल्टा हो गया। कमल खिले हुए थे, उल्टा हो गया। पूर्ण चंद्रमा आए हुए थे, उल्टा हो गया। तो भगवान के लिए काल अपना बाउंड्री तोड़ दिए थे, काल इतने प्रसन्न हो गए थे, इतने प्रसन्न हो गए कि जिसको जो करना भैया कर लो, जिसको जो करना है, कि काल स्वयं खुश थे। जब खुश, जब खुशी होता है शादी विवाह में तो हम खूब पैसा लुटाते हैं, बाद में हिसाब करते हैं, अरे बड़ा गड़बड़ हो गया, तो बाद में करते हैं, लेकिन पैसा लुटाते हैं पहले। आनंद का ऐसा परिपाटी ही है, आनंद में देखते नहीं है बिना हिसाब किताब के। तो काल भी अथ काल है, यहां पर अथ सर गुणों पे थे कालम परम शोभनम, काल इतने प्रसन्न थे कि एकदम फ्री हैंड कर दिए थे सबके लिए, तुमको जो करना है वह तुम करो। तो मानो कि फूल भी जो उस सीजन में नहीं खिले थे, अब बरसात के दिन में कौन कौन फूल खिलता है याद करो, तो कोई है यहां पर फूल वाला? क्या क्या फूल खिलता है बरसात के दिन में? माता जी लोग बताओ, फूल माला बनाने वाले, ये तो कहीं से आ जाता है फूल, तो आजकल तो घर के अंदर बना रहे हैं ना, उस समय ऐसा नहीं था, ओपन था है? तो सब फूल खिले हुए थे, जितना भी फूल का नाम आप जानते हो, चंपा चमेली जूही और क्या कदंब गुलाब, जितने सुमनांसी, एक फूल नहीं थे, बहुत से फूल थे, वैरायटी थी फूलों की। और देवता लोग प्रसन्न होकर के न्यौछावर कर रहे हैं भगवान के, प्रसन्न होकर के न्यौछावर कर रहे हैं या न्यौछावर करने से वे लोग प्रसन्न हो रहे हैं। मुमुचु मुनयो देवा सुमनांसी मुदान्विता, मुदान्विता कितना सुंदर शब्द है, प्रसन्न चिता नहीं है, मुदान्विता उनका एक एक अंग प्रत्यंग प्रसन्न था। भोजन करते हैं तो पेट खुश रहता है, भाई पेट भर गया है। कोई अच्छा वस्तु देखते हैं तो कान आंख खुश रहता है, कोई अच्छा चीज सुनते हैं तो कान खुश रहता है। यहां पर मुदान्विता मतलब कि समस्त अंग समस्त इंद्रियां प्रसन्न थी। यहां आप मूवी देखने जाओ, मूवी बड़ा अच्छा लग रहा है, लेकिन गाना अच्छा ना लगता हो, या गाना अच्छा लग रहा है सीन अच्छा ना लगता हो, ऐसा ही कुछ है ना, या मूवी चल रहा है और गाना बंद हो जाए तो हल्ला करना लोग शुरू कर देंगे, यही करेंगे ना, कि कान को अच्छा। यहां पर मुदान्विता शब्द का अर्थ है कि समस्त इंद्रियां प्रसन्न चित थी, उन मुनियों का और देवताओं का अंग प्रत्यंग प्रसन्न चित था। तो ये तो देवताओं का और मुनियों का बात। अब देखिए, मंद मंद जलधारा, जलधारा जल को धारण करने वाले, जो बादल को जलधारा कहा गया है, वो जल है कहां से, समुद्र से है। ये दोनों में यहां पर समझना चाहिए एक संबंध स्थापित किया गया है। जगर्जू, गर्जू मतलब गर्जना। आप में से कितने लोग समुद्र देखे हो, हाथ उठाओ तो सब लोग ना, जो नहीं देखे जो भी चले जाना, देख रहे हैं समुद्र। अब समुद्र में आप देखोगे कि जब पूर्णिमा का रात हो और सुबह आप जाओ और तब देखो समुद्र का हाहाकार गर्जना। एक गर्जना दोनों के लिए है, जगर्जू एक गर्जना जो है दोनों के लिए, किसके लिए है, जलधारा, जलधारा के लिए भी गर्जना है। ये कैसे बादल हैं, जिस आकाश में बादल ना हो क्या वहां गर्जन होता है, गर्जन तब होता है जब आकाश में बादल हो। ये बादल कैसे हैं, ऐसा नहीं कोई इधर बादल है कोई इधर बादल, छोटा छोटा बादल है, जलधारा। ये बादल जो हैं जल से परिपूर्ण हैं, लदे हुए हैं। जिस प्रकार से आपने से गाय तो देखा ना, गाय लोग गाय देखा है ना, तो एक गाय जो बच्चा न दी हो उसके स्तन को आप देखो, और एक गाय बच्चा देने वाली हो या दे दी हो उसके स्तन को देखो, दोनों के स्तन में अंतर दिखाई पड़ेगा। एक है जिसमें दूध भरा पड़ा हुआ है प्रेम से, अपने बच्चे के प्रेम से, उसको तो दूध भरा हुआ हुआ ना। तो यहां पर जलधारा मतलब जल से भरा पड़ा बादल था, लेकिन यहां पर वर्षा का बात नहीं हो रहा है, वर्षा बाद में होगा। अभी बादल इतने प्रसन्न हैं भगवान के आने से, मुदान्विता इतने प्रसन्न हैं, कहते मंद मंद जलधारा गर्जनो, गर्जन कर रहे हैं लेकिन मंद मंद, मंद मंद कर रहे हैं। मुस्कुरा जगर्जनु, मुस्कुराते हुए आवाज निकाल रहे हैं, कैसे, अनुसागरम, क्योंकि सागर के से ही ये जल हैं, सागर के जल हैं, सागर में भी आने वाले हैं। तो जैसे सागर के लहरों से जो जल आ रहा, जो गर्जन हो रहा था अनुसागरा, ठीक वैसे ही सागर के लहरों से जो जो मंद मंद सुमंद गति से शीतल, सुमंद और मधुर गर्जना समुद्र कर रहे थे, उसी अनुपात में ये जलधर बादल भी गर्जना कर रहे थे। तो एक प्रसन्नता का विषय है, कृष्ण जब आ जाते हैं किसी के जीवन में तो उसका जीवन प्रसन्नचित हो जाता है। तो हम लोगों को सब कुछ प्रयास करना चाहिए कि कृष्ण हमारे जीवन में आ जाए। एक बार कृष्ण हमारे जीवन में आ जाते हैं तो हमको छोड़ते नहीं हैं। भगवान एक बार हमें स्वीकार कर लेते हैं तो वे छोड़ते नहीं हैं, कभी नहीं छोड़ते हैं। इसलिए उनका नाम है नंद नंदन न द न। वो अपने को देते नहीं हैं और एक बार दे दिए तो कभी जाते नहीं हैं। तो हम लोगों को सर्वस्व प्रयास करना चाहिए कि नंद नंदन को हम प्राप्त करें। भगवान सब कुछ दे देंगे, धन दे देंगे, जन दे देंगे, सुंदर पत्नी दे देंगे, अमेरिका का वीसा भी दे देंगे, सब व्यवस्था कर देंगे, लेकिन अपने को नहीं देंगे। और जो केवल कृष्ण को ही चाहता है पीछे पड़ा रहता है तो भगवान अपने को दे देते हैं। बस हम लोगों को उन भिखारियों के समान बनना है। जैसे आप जाते हो कभी डाउन डाउन तो देखो भिखारी आ जाते हैं। आजकल तो एयर कंडीशन गाड़ियां हैं, पहले एयर कंडीशन गाड़ियां नहीं थी तो भिखारी आते थे, वो पीछे पीछे दौड़ते थे, पीछे पीछे, इतने पीछे गाड़ी रफ्तार में फिर भी दौड़ते हैं। तो देख कोई बात नहीं, तो कितनी विपत्तियां आए, विपत्तियों के आने के बावजूद भी कृष्ण का शरण नहीं छोड़े हम। इसे भगवान चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, आशीष सेवा पाद्रताम विनष्टु माम अदर्शनम मर महताम करो तुवा यथा तथा वा विद्धा तुलम भटो मत प्राण नास्तु स एव ना पर। जैसे रखना है भगवान रखो, लेकिन मैं आपका हूं। चाहे प्रसाद मिले या ना मिले, चाहे टेम्पल कमांडर प्रेसिडेंट हमको इंसल्ट करे, कुछ भी करे, हे राधारास बिहारी मैं आपका हूं। इस भाव से यदि हम रहेंगे तो कृष्ण अपने को दे देंगे। मैं प्रायः ये कहावत कहानी ये कहता हूं कि किस प्रकार से एक मंदिर था और वहां जो पुजारी था वो बड़ा श्रेष्ठ उच्च कोटि का भक्त था। तो जो लोग भी आते थे मंदिर में, प्रायः सब लोग मांगने ही आते हैं, प्रायः लोग भगवान से कुछ न कुछ मांगने ही आते हैं। तो वो मंदिर में आते थे और पुजारी भगवान से प्रार्थना करता था उनके लिए, तो उनकी मनोकामना पूर्ण हो जाती थी। इसलिए इस प्रकार से पुजारी फेमस बन गया, चमत्कार को नमस्कार, और बहुत लोग आने लगे। और स्त्रियों का तो कहना ही क्या है, स्त्रियां ज्यादा आती थी। तो पॉलिटिक्स सब जगह होता है, मंदिर में होता है पॉलिटिक्स, मंदिर में पॉलिटिक्स नहीं होता है। तो सब लोग गुरु के पास गए कि गुरु जी देखिए ये पुजारी पतित हो गया है, सब माता जी लोग इसके पास आ रही हैं। तो सब पूरे ब्रह्मचारी आश्रम में हल्ला हो रहा था, तो गुरु जी ने उसको निकाल दिया आश्रम से। अब नया पुजारी आया तो अब दोपहर का नैवेद्य चढ़ाना था, तो नया नया पूजा पुजारी था तो नहा करके फर्स्ट क्लास तिलक लोग कर रहा था। 5 मिनट देर हो गई आने में, 12 बजे के 5 मिनट में आया। और ये पुजारी जिसको निकाल दिया गया था ये जा रहा था, रास्ते में देखा गरम गरम जलेबी बन रही है और नैवेद्य का समय हो गया था। वहीं खड़ा हुआ और भगवान का स्मरण किया और जलेबी अर्पण करना शुरू कर दिया। 5 मिनट में बहुत जलेबी आ गया। ये जब नया पुजारी पूरा अपना ड्रेसिंग करके आया तो देखा सब जलेबी पड़ा हुआ है, तो उसे आश्चर्य हो गया जलेबी कहाँ से आ गया। भागते भागते गुरुजी के पास गया, गुरुजी थोड़ा देर हो गया हमको आने में, मैं यहाँ तो सब जलेबी पड़ा हुआ है। अब गुरुजी आए, आश्चर्य हुआ। गुरुजी बेचारे शुद्ध भक्त थे, वो ध्यान में पड़े और देखे कि क्या सब कैसे क्या हो गया। तो गुरुजी भगवान को डांट रहे हैं कि प्रभु आप जानते हो मैं उसको निकाल दिया हूँ, तो आप उसके हाथ का अर्पण किया हुआ क्यों आप स्वीकार कर लिया। तो भगवान मुस्कुराने लगे, मुदान्विता। भगवान प्रसन्न होकर के मुस्कुरा कर बोल रहे हैं कि भगत जी, किसको रखना और किसको निकालना ये कहलाता है व्यवस्था, और मैनेजमेंट का काम आपका है। किसको रखना किसको निकालना ये आपका काम है, लेकिन जिसको मैं एक बार रख लेता हूँ उसको कभी नहीं निकालता हूँ। तो हम लोगों को प्रयास करना चाहिए कि भगवान हमको अपने पास रख ले, बस और कुछ मत करो। एक बार नौकरी परमानेंट हो गई तो गवर्नमेंट इंडिया हो गया, काम मत करो तो अभी चलेगा, ऐसा बात नहीं है। लेकिन एक बार यदि भगवान हमको स्वीकार कर लिए तो आप उनके रक्षण में हो, और मारे कृष्ण राखे के, राखे कृष्ण मारे के। तो ये लोग प्रसन्न चित्त हैं। वास्तव में जो कृष्ण के भक्त हैं वो कभी मरोस नहीं होते हैं, चैंट एंड बी हैप्पी, और क्या। कृष्ण भक्ति और कुछ नहीं है, केवल आनंद कंद, केवल आनंद ही आनंद है कृष्ण भक्ति में। चाहे प्रसाद खाओ, चाहे भगवान का नाम लो, चाहे भगवान का कथा सुनो, चाहे भगवान का मंदिर मार्जन करो, सब में आनंद ही आनंद है। तो कृष्ण का सेवा करने से मुदान्विता है, हम लोग हमेशा प्रसन्न चित रहेंगे कृष्ण का सेवा कर कर करके। अब भगवान के आविर्भाव का अब समय आया। निशिते तम उद्भूते, निशिते तम उद्भूते जायमाने जनार्दने, देवक्या देवरूपिण्या विष्णु सर्वगुहाशय, आविरासिद यथा प्राच्याम दिशे इंदोरिव पुष्कलम। जयमाने जनार्दने, निशिथे तम उद्भूते प्राच्या दिशि यथा पुष्कलम, इंदु इव देवक्या देवरूपिण्या सर्वगुहाशय विष्णु आविरासित। तो जयमाने जनार्दने, यहां पर शब्द है निशिथे। निशिथ किसे कहते हैं? निशिथ का मतलब होता है अर्धरात्रि तक अंधकार होता है, 12 बजे तक अंधकार होता है, उसे निशि कहा जाता है। निश मतलब अंधकार, और जब अंधकार छटने लगता है, जब प्रकाश शुरू होने लगता है, तो जो ज्वाइंट है अंधकार का खत्म होना और प्रकाश का प्रारंभ होना, उसे उस अवधि को निशित कहा जाता है। दिन में उसे संध्या कहा जाता है, त्रिसंध्या होता है ना, रात में जो होता है उसको निशित कहा जाता है। जहां पर 12 बजे तक अंधकार शुरू होगा, आजकल तो 5 बजे शुरू हो जाता है अंधकार, यही ना, सूर्यास्त कब होता है? 6:24। तो 6:24 तो डार्क नहीं हो जाएगा ना, शुरू होगा धीरे 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 धीरे, 12 बजे तक, 12 बजे से एक आध मिनट पहले डेंस डार्कनेस हो जाएगा, और 12 बजे के बाद जब टर्न होगा तो प्रकाश शुरू होना शुरू हो जाएगा। धीरे धीरे होते होते 6 बजे तक प्रकाश शुरू हो जाता है। तो अंधकार का अंत और प्रकाश का प्रारंभ जो होता है, जो काल होता है, वो कहलाता है निशित काल, यानी 12 बजे। तो उस समय जयमाने जनार्दन, भगवान जनार्दन आए। भगवान जनार्दन का आविर्भाव हुआ उस समय। प्रकट हुए भगवान निशित काल में, और यहां पर तम उद्भूते का दो अर्थ होता है। तम उद्भूते का दो अर्थ होगा, एक तो होता है घनघोर अंधकार, और दूसरा है घनघोर अंधकार खत्म होना भी। तम उद्भूते और तम उद्भूते, तो दोनों का अर्थ। वही निश्चय से ही इसका उपमा दिया है। निश्चते तम उद्भूते जय माने जनार्दने, जनार्दने जन अभय करम जनानाम सर्वज्ञ भक्त मुनि देवादिनाम अर्दने अभयम करम। भगवान भक्तों को अभय प्रदान करने के लिए सबको, भक्तों को, मुनियों को, देवताओं को, जितने लोग भगवान के शरण में आए थे, जो कण से त्रस्त थे भूमि से लेकर के सब लोगों को, ब्रह्मा जी को, जो जो भगवान के शरण में आए थे, उन लोगों के जो तकलीफ देने वाले थे, जो लोग दुख देते थे, उन लोगों को नाश करने के लिए और भक्तों को अभय प्रदान करने के लिए भगवान जनार्दन निश्चित काल में आए। तो समय क्लियर है भगवान कब आए, 12 बजे रात्रि में निश्चित काल में आए। अब यहां पर माता देवकी का वर्णन किया गया है, देवक्या देव रूपिण्या विष्णु सर्वगुहाशय। देवकी का गुणानुवाद यहां पर क्या, देवकी का अर्थ क्या होता है, जो देने वाली हो, जो देने वाली हो, देने वाले को देवता कहा जाता है, जो देने वाला है, और देवकी मतलब जो देवताओं को भी दे, देवताओं को भी देने वाली है, यानी देवताओं को भी जन्म देने वाली है या देने वाली है। देवक्या देव रूपिणिया, देवकी कैसी थी, देव रूपिणिया, देव मतलब भगवान, भगवान के समान थी। भगवान कैसे हैं, सच्चिदानंद हैं। अन्यत्र कहा गया है विष्णु रूपिणिया, विष्णु के समान थी देवकी, सच्चिदानंद स्वरूप देवकी का भी हो गया था। यहां सिद्धांत है, समझना चाहिए, भूलना नहीं चाहिए कि जिस प्रकार से लोहा होता है, लोहा को आग में आप डाल दो तो कुछ समय के बाद वह लोहा लोहा नहीं रह जाता है, वह आग का रूप धारण करता है, हीट और लाइट दोनों उसमें हो जाता है। उसी प्रकार से भगवान के जो भक्त लोग हैं, देवकी, वसुदेव, नंद, यशोदा, जितने भक्त लोग हैं, जब भगवान से उनका तदात्म हो जाता है, संबंध स्थापित हो जाता है, तो वे लोग देव रूपा हो जाते हैं, देवकी देव रूपिणिया, देवतुल्य हो जाते हैं। इसीलिए कहते हैं ना, अरे ये महाराज तो त्रिकालदर्शी हैं, हैं? त्रिकालदर्शी हैं। त्रिकालदर्शी कौन है, कौन है त्रिकालदर्शी, भगवान है। भगवान गीता में कहते हैं, वेदाहम संदितानि वर्तमानानि च अर्जुन भविष्याणि च भूतानि, मैं सब जानता हूं, भूत भविष्य सब जानता हूं। भगवान तीनों काल को जानते हैं, और जो भगवान के प्रतिनिधि हैं वो भी तीनों काल को जानते हैं। ये त्रिलोक, ये महाराज त्रिकाल ज्ञानी है, भूत भविष्य सब जानते हैं, त्रिकाल ज्ञानी है। तो देव क्या द्वय रूपणिया, उदाहरण दिया गया है आयरन का, भगवान से जुड़े रहेंगे तो हम लोग भी विष्णु रूपिणिया हो सकते हैं। इसलिए कहा जाता है कि भक्तों का जो स्वरूप है, भक्तों का जो देह है, शुद्ध भक्तों का, उसे सामान्य नहीं मानना चाहिए, अपराध होता है। जो जितना मात्रा में भक्ति करता है उतना मात्रा में वह देव रूप है या विष्णु रूप है। इसीलिए मन से, तन से कभी भी भक्तों के चरणों में अपराध नहीं करना चाहिए, झगड़ा मारपीट नहीं करना चाहिए, वाणी से भी निंदा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वे देव रूपा हैं, विष्णु रूपा हैं। जैसे यहां पर देव के, देव क्या देव रूपिणिया विष्णु सर्वगुहाशय, सबके हृदय भगवान परमात्मा के रूप में विद्यमान है। देवकी भगवान का दर्शन कर रही थी अंदर, क्योंकि अंदर और बाहर बिल्कुल शुद्ध थे। भगवान विराजमान थे देवकी के हृदय में। यह श्रवण कीर्तन एक ऐसा विधि है जिसके चलते हम भगवान को हृदय में दर्शन कर सकते हैं। यदि किसी को दर्शन करना है भगवान का तो श्रवण कीर्तन जरूर करें। श्रोताम स्व कथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तनम हृदयंतस्त ही अभद्राणी विधुनोति सुहृत सताम। सुहृत जब हृदय शुद्ध हो जाता है तो सात्वताम पति भगवान जो हैं वहां पर विराजमान होते हैं और तब वह व्यक्ति संत कहलाता है। सताम वो सताम हो जाता है और वैसे संतों का संगति करना चाहिए। सताम प्रसंगाम वीरज संविदो भवंत हृत कर्ण रसायन कथा तज्जोषणादाद अपवर्ग वर्तमनी श्रद्धा रतिम भक्ति अनुक्रमिष्यति। तो देवकी सताम है, उनका हृदय बिल्कुल पवित्र है। जैसे ध्रुव महाराज जब तपस्या करने लगे तो उनका हृदय बिल्कुल शुद्ध हो गया और वहीं पर विष्णु सर्वगुहाशया भगवान वहीं थे और उन्हीं भगवान का भी दर्शन कर रहे थे। लेकिन एक समय आया कि भगवान वहां से बाहर निकल गए और भगवान वहां से बाहर निकले। देखिए विष्णु ध्रुव महाराज और देवकी में अंतर है कि जब भगवान ध्रुव महाराज के हृदय से बाहर निकले प्रकट हुए सामने तो ध्रुव महाराज बेचैन हो गए, कहां चले गए। लेकिन देवकी के साथ ऐसा नहीं हुआ। जिनको देवकी देख रही थी वही बाहर भी है, कोई अंतर दिखाई नहीं पड़ा देवकी को। तो देवक्या देव रूपेणया विष्णु सर्वगुहाशया। अब भगवान कैसे उत्पन्न हुए, कैसे आए। आविरासित यथो प्राच्य दिशि इंदुर यो पुष्कलम। भगवान पूर्व क्षितिज में चंद्रमा पूर्व क्षितिज में उत्पन्न होते आते हैं। यह जो बताया गया है प्राच्य दिशि, कितने दिशाएं हैं है? 10 दिशाएं ना। चंद्रमा कहीं से आ सकते हैं? पूर्व से ही क्यों आते हैं? क्योंकि चंद्रमा पूर्व से ही उदय होते हैं और कहीं से उदय नहीं होते हैं। वैसे ही कृष्ण वसुदेव जी की कई एक पत्नियां थी, किसी की पत्नी से आ सकते थे, लेकिन नहीं। देवकी जो है वो कृष्ण की इटर्नल मदर हैं। जिस प्रकार से बलराम जी की इटर्नल मदर जो हैं रोहिणी जी हैं, वैसे ही कृष्ण की इटर्नल मदर जो हैं वह देवकी जी हैं। वही बलराम जी आए थे देवकी घर में, लेकिन वहां नहीं रहे, हमारी मां अलग है, ले चलो हमको यहां से। तो जोग माया लेकर गई उनके मां के पास। और वैसे ही कृष्ण भी देवकी के ही वो वासुदेव हैं, वो देवकी के ही पुत्र हैं। जैसे पूर्व दिशा में ही चंद्रमा उदित होता है वैसे ही कृष्ण देवकी के यहां आते हैं। तो आविरासिद यथा प्रकट हुए आए आविरासित, जैसे एक दरवाजे से नहीं दूसरे दरवाजे से आना, आए आविरासित प्रवेश किए। आविरासित यथा प्राच्य उपमा दिया गया है दिशु इंदियो पुष्कलम है पूर्ण चंद्रमा के समान। यहां पर तात्पर्य में आप लोगों ने पढ़ा। दूसरा बात एक आचार्य कहते हैं चंद्रमा एक पर्सनालिटी भी है। जैसे भगवान सूर्य सूर्यदेव हैं, वो चंद्रदेव हैं, तो वहां पर सभी देवता लोग प्रकट थे, वहां थे और चंद्रमा भी आए, क्योंकि उनके कुल में कृष्ण आए हैं। कृष्ण चंद्रवंशी हैं, भगवान श्री राम सूर्यवंशी हैं, तो कृष्ण चंद्रवंशी हैं, इसलिए चंद्रमा अगवानी करने के लिए कृष्ण का वे पुष्कलम है पूर्ण चंद्र के रूप में आए, पूरा चंद्रमा के रूप में आए, षोडशो कला के साथ में आए भगवान वहां पर। तो अब यहां तक भगवान के वर्णन किया गया है, भगवान के जन्म का। अब कल से भगवान का वर्णन किया जाएगा कि भगवान कैसे थे। तम अद्भुतम बालकम, अद्भुतम बालकम, ये कोई ऑर्डिनरी बालक नहीं थे। अद्भुत किसे कहते हैं उसका व्याख्या किया गया है कि संसार में उसके समान कोई है ही नहीं, न देखा है और न जो हमारे इंद्रिय तीत हो उसे अद्भुत कहते हैं। इंद्रिय तीत आश्चर्य, जिसको देखने से आश्चर्य उत्पन्न हो जाए। तम अद्भुतम बालक, एक कौन है? बालक है। बालक, बाल मतलब बाल और क मतलब श्रेष्ठ, जो बालों में श्रेष्ठ हो। और बाल मतलब, बाल मतलब पुत्र और क मतलब ब्रह्मा, ब्रह्मा जिनके पुत्र हो वह बालक है। और बाल मतलब ए और क मतलब छिद्र है, यह वह है जिनके एक एक रूम में विश्व ब्रह्मांड स्थित है, यह वह बालक है, ऑर्डिनरी बालक नहीं है। दूसरा अम्बुज क्षण, अम्बुज जस्य इक्षणम इति अम्बुज क्षणम। अम्बुज, अम्बु मतलब समुद्र और ज मतलब जन्मा हुआ। समुद्र से जो निकला हुआ है वह जस्य इक्षणम, जिनके दृष्टि में हो, जिनके दृष्टि में हो। समुद्र से सब जो निकला हुआ है, एक बार मैं इसी का व्याख्या कर रहा था तो क्या नाम अपना गोकुलेश्वर क्लास में है आज गोकुलेश्वर प्रभु नहीं तो गोकुलेश्वर प्रभु ने हमसे प्रश्न पूछा कि आपने कहा कि समुद्र से जो निकला है तो समुद्र से विष भी निकला था, तो भगवान के आंख में विष है? मैं कहा बिल्कुल विष है। देखा हो विष? कोई देखा है? नहीं देखा है। भक्तों को नहीं दिखाते हैं, असुरों को दिखाते हैं अपना विष। भगवान की दृष्टि पास है, कितने लोग जलकर भस्म हो जाएंगे, थर थर कांपते रहते हैं कंस इत्यादि लोग, वो विष नहीं तो और क्या है। और जिसको पैसा चाहिए वो कृष्ण का भजन करो, यहां पर अम्बुज क्षण कहा गया है। लक्ष्मी जी कहां से निकली थी? समुद्र से ना। तो जिनके दृष्टि में लक्ष्मी निवास करती हो वे हैं अम्बुज क्षणम। तो आओ भगवान के पास, पैसा मिल जाएगा दर्शन करने से ही, और कुछ नहीं करना है। और समुद्र से ही उत्पन्न हुआ था कमल, तो इसलिए यहां पर अम्बुजक्षण का मतलब भगवान का कमल नयन। एनीवे मैं आगे नहीं बढ़ूंगा, यह है। तो आप लोग आगे सुनेंगे कि भगवान का जो वर्णन किया गया, उनके सौंदर्य का वर्णन किया गया, रूप का वर्णन, वो चार श्लोकों में किया गया है। उसके बाद और प्रार्थना किया गया है, कैसा प्रार्थना है? नतांगम कृतधि कृतांजलि, कृतधि कृतांजलि। एनीवे तो इस प्रकार से प्रार्थनाएं की गई है। तो आज का जो ये दो श्लोक है, इस श्लोक में, प्रथम श्लोक में मुनि और देवता लोग प्रसन्न चित होकर के अपना सर्वस्व भगवान को न्यौछावर कर रहे हैं, साथ साथ जलधर बाजल प्रसन्न होकर के नाच गा रहे हो मानो, और समुद्र भी सुमधुर भाव से कृष्ण का गुणानुवाद कर रहे हैं। ये समुद्र भी गुणानुवाद कर रहे हैं कृष्ण का, और जलचर बादल जो हैं वे भी गुणानुवाद कर रहे हैं। तो हम लोगों के जीवन का लक्ष्य होना चाहिए कृष्ण का गुणानुवाद। और भगवान कब आए? निश्चित काल में आए। मैं बताया कि निश्चित काल किसे कहते हैं, भगवान पूर्व दिशा में आए, जैसे पूर्व दिशा में चंद्रमा आते हैं वैसे भगवान देवगी के पुत्र के रूप में आए। हालांकि सबके हृदय में भगवान परमात्मा के रूप में हैं, इसलिए देवकी को प्रसव का पीड़ा नहीं हुआ, भगवान प्रकट हुए हैं, भगवान जन्म नहीं लिए हैं, प्रसव का पीड़ा नहीं हुआ, इसलिए देवकी प्रार्थना कर पाई थी। धन्यवाद। हरे कृष्ण। कोई प्रश्न है? एनी कमेंट? माइक दो।
हरे कृष्ण भाजी, थैंक यू वेरी मच भाजी, सच ए वंडरफुल क्लास। आपने इतना एक एक डिटेल में समझाया, रियली अनइमेजिनेबल। सो गुरुजी, आपने ये बताया था कि ये जो, उसके बारे में पूछना चाहता हूँ कि जनरली कई बार लोग पूछते हैं ऐसा कि मतलब जो जन्म है, तो भगवान ने जो जन्म लिया है तो भगवान के मतलब देवकी के सामने प्रकट हो गए थे या फिर उनके हृदय से निकल के प्रकट हुए थे? मतलब जैसे आपने बताया कि देवकी के हृदय से अपियर हो गए, दिस अपियर हो गए थे क्या? मतलब सामने प्रकट हुए थे तो मैं जानना चाहता
हूँ। सर्व गुहाशया, भगवान सबके हृदय में परमात्मा के रूप में तो हैं, तो भगवान वहां से बाहर आए कि अंदर भी हैं? ऐसा नहीं कि बाहर गए तो वहां पर है नहीं, भगवान बाहर आए, वहीं प्रकट हुए, वो हृदय में ही बाहर आए, इस दरवाजे से निकल उस दरवाजे में आ गए। तो उसमें अप्रभुपाद उदाहरण दिए हैं सूर्य का, कि ये सूर्य है वो सबके सिर पर हैं, फिर जितने विशाल हैं ना सबके सिर पर हैं, इसका मतलब कि आपका सिर जा रहा है उनका सिर अलग है, सबके सिर पर हैं सूर्य का रोशनी, वो रोशनी एक कण है। तो भगवान के लिए आने में कोई तकलीफ, एक आचार्य कहते हैं कि भगवान स्तंभ से आ गए, वो तो सर्व गुहास है, सबके हृदय में वहां से आए। अरे वो भी छोड़ो, स्तंभ से आ सकते हैं, नरसिंह भगवान खंभे से है ना, वहां पर तो वहां पर परमात्मा नहीं थे ना, तो उनको आना कोई बड़ा बात नहीं है।
वन मोर क्वेश्चन, तो जी यहाँ पे आपने बताया निश्चित शब्द का मीनिंग है कि जो सेंटर का पॉइंट है जहाँ पे रात जो है वो खत्म हो रही है यहाँ पे, तो फिर तद उद्बुद्ध जो शब्द है उसका प्रयोग क्यों किया गया, उसका क्या मीनिंग है? क्योंकि क्या दोनों सेम शब्द है यहाँ? क्योंकि
नहीं, तम उद्भूते का अर्थ होता है जब अंधकार खत्म हो रहा था। देखो 12 बजे से पहले में अंधकार बढ़ता है और 12 बजे के बाद, तो इसका अर्थ दूसरा हुआ कि भगवान आए अंधकार को खत्म करने के लिए, तम को खत्म करने के लिए, अंधकार को खत्म करने के लिए भगवान आए। तो ये दुष्ट लोग हैं वो तमोगुणी होते हैं, तो उनको खत्म करने के लिए भगवान आए हैं, ये दूसरा अर्थ है।
थैंक यू वेरी मच प्रोजी।
हरे कृष्ण प्रोजी। प्रोजी, जो मुमुचुर सुमन नाम से आपने बताया कि मुनियों के लिए वो मन है, तो फिर मतलब मुमुचुर सुमनामसी का क्या अर्थ होगा उनके लिए? मन को अर्पित किया उन्होंने?
मन से, शुद्ध मन से वे लोग अपने वाणी के द्वारा भगवान का, मैं कहा ना कि मुनियों को धन है वाणी का धन और देवताओं को धन है पुष्प का धन, तो एक मन एक वाणी के धन से भगवान का सेवा किए और एक पुष्प सेवा किए।
प्रभु जी, आई वॉन्ट टू सबमिसिवली इंक्वायर फ्रॉम यू।
पैसा लेकर आए हो?
पैसा नहीं लाया हूं,
मर जाएगा ये डॉक्टर, लेकिन पैसा नहीं देगा।
पैसे की बात मत करो।
बोलो बोलो बोलो।
प्रभु जी, मदर यशोदा वॉज शी ऑल द टाइम फुल्ली अवेयर that her child Krishna is the original personality of the Godhead, and if yes, how can she dare to show the stick to Lord Krishna and make an attempt to tie him up with the rope?
I did not talk about this today, so why are you asking here publicly?
I came late,
so don't ask, come to my office, I'll tell you.
Thank you.
Only ask the question what is relevant to the class today. Don't disturb the mood. There is one mood here. Your mood is different mood. You are a higher person. This is different mood. This is in mood of this is Aishwarya Bhav. You are in Madhuri Bhav. Okay.
Hare Krishna Prabhu. प्रभु जी, आपने बताया, जैसे मैंने भी कृष्ण बुक में पढ़ा था कि भगवान पहले देवकी, माता देवकी के सामने प्रकट हुए थे चतुर्भुज रूप में, तो जैसे उन्होंने गर्भ धारण किया था देवकी जी ने, तो जैसे गर्भ धारण करती है कोई भी स्त्री तो उदर की वृद्धि होती है, तो भगवान उनके गर्भ में थे ना 9 महीने की नहीं थे कि मतलब गर्भ में थे ना भगवान उनके, तो गर्भ से प्रकट हुए कि मतलब जैसे जन्म नहीं लिया भगवान ने, तो जैसे गर्भ से बाहर आए, तो मतलब वो समझ में
प्रसव पीड़ा नहीं हुआ देवकी को, जैसे अन्य समान स्त्रियों को प्रसव पीड़ा होता है, भगवान जब आए तो प्रसव पीड़ा देवकी को नहीं हुआ। भगवान तो सबके हृदय में है,
उधर में थे और उधर से बाहर आ गए ऐसे ही।
हाँ, तो भगवान आए लेकिन प्रसव पीड़ा सामान्य बालक के समान नहीं आए, भगवान भगवान के रूप में आए। वो भी एक कारण है और वही भगवान बताए हैं कि कैसे आप लोग तपस्या किए थे पूर्व जन्म में और मैं इसी रूप में आया था, यही वह रूप है जब आपने कहा था कि आपके समान पुत्र चाहिए तो इसलिए मैं आ गया हूँ, आपके समान तो आ गया। अब देवकी को डर हो गया कि अरे बाप रे कंस मार देगा इसको भी, कितना भी ऐसा है, तब तो प्रार्थना की कि तज हूँ तात रूपा, ये गड़बड़ हो जाएगा, उपसंहर इमम रूपम, इस रूप को आप त्याग दो। तो भगवान माँ का आज्ञा पालन करके, माँ ने कहा इसलिए भगवान रूप त्याग किए, माँ ने कहा था कि आपके समान पुत्र चाहिए तो भगवान वैसे ही आए। जब उन्होंने कहा कि इस रूप को त्यागो, उपसमरम इमम रूपम, इस रूप को त्यागो, चाहे रामायण में कहते हैं ना है? तज हूँ तातय रूपा भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हर्षित महतारी मुनिमन हारी अद्भुत रूप निहारी, अद्भुत रूप, अद्भुतम रूपम, अद्भुत रूप निहारी। उसके बाद आगे क्या है सब भूल गए हो क्या तुम लोग? मैं तो है तज हूँ तात करहूँ शिशुलीला, ऐसे कुछ है ना, तो मैया ने जो कहा वो कृष्ण की है, राम भगवान की है, वैसे ही भगवान कृष्ण भी की है। और क्या प्रश्न?
हरे कृष्ण प्रभु, भगवान कृष्ण के ही तो विस्तार रूप है, जैसे तीन विष्णु हैं, तो देवकी माता के सामने जब चतुर्भुज रूप में भगवान विष्णु प्रकट हुए तो वहाँ पर भगवान कृष्ण स्वयं प्रकट हुए या विष्णु के रूप में, ऐसा इसको कैसे समझें?
भगवान स्वयं भगवान जो हैं वो ब्रज में हैं, ब्रजनंदन श्याम सुंदर हैं, वे ब्रज में निवास करते हैं, और जो संकर्षण अनुरुद्ध वासुदेव और प्रद्युम्न ये मथुरा में आए शंख चक्र गदा पद्म के रूप में, तो ये जो हैं ये हैं वासुदेव कृष्ण हैं। तो द्वारिका में वासुदेव कृष्ण हैं, मथुरा में वासुदेव कृष्ण हैं, हस्तिनापुर में वासुदेव कृष्ण हैं। विष्णु तो बहुत नीचे हैं, सबसे ऊपर हैं गोलोक नाम धाम तले तस्य देवी महेश हरिधाम सुते सुते सु ते प्रभाव निचया विहितांश्च जेन गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। विष्णु संकर्षण से आए हैं और विष्णु इस संसार में हैं, स्पिरिचुअल वर्ल्ड में विष्णु यहाँ पर हैं, कर्णोदकशाही विष्णु, गर्भोदकशाही विष्णु और क्षीरोदकशाही विष्णु। तो जो ये चतुर्भुज जो है गोलोक के बाद तुरंत कृष्ण के बाद तुरंत चतुर्भुज हैं ये कृष्ण, चतुर्भुज के साथ में चतुर चारों चतुर्भुज के साथ में आए हुए हैं वहां पर, और यह है वासुदेव। ऑलराइट, यस, उधर दो माइक।
हरे कृष्ण भाई, इसमें बड़ा सुंदर वर्णन आया मंद मंद जलधरा,
मैं और वर्णन कर सकता हूं उसका लेकिन वहां सामने घड़ी रखे हैं लोग,
तो ये ऑस्पिशियस साइंस सारे प्रकट हो गए। इसके पहले वाले श्लोकों में हमने देखा कि वर्णन आया था कि आसमान क्लियर हो गया, एकदम क्लियर आसमान था और सारे तारे नक्षत्र साफ दिख रहे थे, तो ऑस्पिशियस साइन कौन सा है, छटा हुआ आसमान या गर्जना हो रही है? वो
कृष्ण के जो भी व्यक्ति सेवा करता है वो ऑस्पिशियस में हो जाता है, कृष्ण के सेवा में कोई चीज खराब है नहीं। हम लोग किसी चीज को खराब देखते हैं अच्छा देखते हैं, कृष्ण के लिए कोई चीज खराब नहीं है कि सब कुछ कृष्ण का है। तो सबका अधिकार है प्रसन्न होने का, बादलों का भी अधिकार है, आखिर तो बादल एग्जिस्ट तो करते ही है ना, तो ही प्रसन्न होकर के भगवान का अगवानी कर रहे हैं, इसलिए उनको अलग किया गया है। अब तक से क्लियर आसमान का बात हुआ है, अब बादल वाले आकाश का बात हुआ है, जलधारा का बात हुआ है, ये तो महीना उन्हीं लोगों का था ना, क्लियर आसमान का महीना नहीं था वो। वो जो अषाढ़ का महीना होता है, वर्षा होता है ना उस समय, तो उन लोगों का ही समय होता है। लेकिन सबको प्रसन्न होना था तो काल ने छुट्टी दे दिया था, जिसको करना है कर लो। तो ये लोग अपना ऐश्वर्य भगवान को दिखा रहे हैं कि हम भी एग्जिस्ट करते हैं, इसमें कोई तकलीफ नहीं है, कोई कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है। क्लियर है कुछ? बोलो क्या समझ में, पूछो है?
तो कृष्ण की सेवा में हर चीज ऑस्पिशियस बन जाती
है। यस, कहाँ बोलो?
एक दूसरा सवाल है, दूसरा सवाल है थोड़ा टेक्निकल है जी। वो
टेक्निकल जो पढ़े लिखे हो बताएंगे, मैं जितना जानता हूं उतना करूंगा, बताओ।
आपने कहा कि जब भगवान प्रकट हुए और फिर उनको बताया कि आप अपने पिछले जन्म में प्रश्नी थे, सुतपा थे, तो उसमें वो भी बताए थे कि तीन तीन रूप तीन अवतार में मैं आऊंगा, तीन बार में आपके लिए प्रकट
हूँ। क्योंकि मैं वैसा नहीं हूं तो हाँ तो बोल दिया था डॉक्टर, तुम बोल दिया किसी को 10 रुपया दूंगा 100 रुपया, और नहीं दिया तो आपको 400 देना पड़ेगा, 4 गुना। हाँ,
तो दूसरी बार भगवान आए थे कश्यप और अदिति के पास, तब ये तीसरी बार प्रकट हुए हैं। पर कृष्ण की लीला में ही हम देखते हैं कि कश्यप और अदिति प्रस्तुत थे, क्योंकि वो अदिति के कुंडल लेने के लिए गए थे, वो नरकासुर से युद्ध किए थे। तो देवकी और कृष्णी मतलब अदिति एक साथ प्रस्तुत थे लीला में, भगवान के लीला में, तो ये कैसे हो गया?
चलो कौन बताएगा? सुनो चैतन्य प्रभु बताओ, पहले आप लोग बता लो तब बता। सब लोगों को प्रश्न समझ में आया कि नहीं?
एक जगह पे या एक समय अलग अलग जगह पे भी भगवान अवतरित हो सकते हैं, तो ये कहना कि एक जगह पे वो अवतरित हुए हैं तो दूसरी जगह पे अवतरित नहीं हो सकते हैं, या एक ही रहना चाहिए, तो वो तो भगवान के ऊपर आरोपित उनको ये कर रहे हैं। तो दो ही क्या, हजार जगह पे एक जगह एक समय वो अवतरित हो सकते हैं, तो कुछ इसमें कॉन्ट्रडिक्शन?
विष्णु सर्व गुहाशय सबके हृदय में है ही ऑलरेडी, एक तो एक उतर हुआ और ठीक है।
कृष्ण प्रभु जी प्रश्न है
ना, ना ना इसी प्रश्न का उत्तर चल रहा है अभी, उत्तर खत्म नहीं हुआ है, शुरू हुआ है।
और क्लैरिफाई कर लेता हूँ कि भगवान तो विस्तार कर सकते हैं अनंत रूप में, ये जीव तत्व की बात कर रहे हैं कि अदिति और देवकी दोनों एक साथ कैसे प्रस्तुत थे।
हाँ पंडित बताएगा।
कृष्णो जो कश्यप और अदिति हैं, पहली बात तो आधिकारिक देवता में आते हैं, और वैवस्वत वो पीछे चाक्षुष मनवंतर से वो चले आए हैं कश्यप जी, और इस समय पर भी हैं, जो क्योंकि जो बामन देव का आविर्भाव हुआ है वो वैवस्वत मनवंतर की पहली चतुर्युगी में, कुछ लोग चौथी चतुर्युगी बोलते हैं, इसलिए जो बामन कश्यप और अदिति अभी भी हैं, क्योंकि इस समय जो इंद्र हैं उनकी माँ अदिति ही हैं ये वाली, तो वो अपने स्थान पर जब भी उनका, जैसे मनु है उनका कार्य पूरा हो गया तो प्रजापति लोक में चले जाते हैं, तो कश्यप भी एक प्रजापति हैं और अदिति उनकी धर्मपत्नी हैं, इसलिए वो आबिर भगवान को जन्म देने के बाद भी वो अपने अपने धाम में स्थायी रूप से निवास करते हैं, और जब टाइम पूरा हो जाएगा तो वापस जो जो उनकी गति को प्राप्त कर लेंगे, तो इसलिए इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। उनका एक जन्म हो गया वो पूरा हो गया, उसके बाद आधिकारिक देवता होने से अपने लोक में अपने स्थान पर प्रजापतियों के लोक में चले जाते हैं। स्पष्ट हुआ?
नहीं नहीं आप अपना उत्तर दे दिया, आप दूसरे को बोलने दो।
अच्छा
आपका
मैं आप यही पूछ रहे थे।
नहीं आप मत पूछो ना, बलदेव बलदेव तुम्हारा उत्तर हो गया खत्म, अब असीम प्रभु को दे दो, और लोग उत्तर देंगे ना। वो काम मैं करूंगा, तुम नहीं कर सकते हो, क्लास मैं दे रहा हूँ, तुम नहीं दे रहे हो।
जो जो अदिति जो है ना अंश स्वरूपा है, जैसे एक साथ में हनुमान जी भी प्रकट रहते हैं, उधर मुरारी गुप्त के रूप में भी हैं, राधा रानी भी हैं, उनके अंश स्वरूप गदाधर हैं, तो ऐसे देवकी जो है संपूर्ण कला से है, उसके अंश स्वरूपा जो है अदिति है।
वेरी गुड विष्णु, सब पंडित लोग बोलो जो पढ़े हो किताब पढ़ो। वेरी गुड, सो फार गुड, चलो। और कोई जगत पुरुष प्रभु? ऑलराइट, तो बलदेव जो कहे और असीम प्रभु वो दोनों ठीक है, दोनों वही बात है। अदिति आज भी हैं इस युग, ये जो ब्रह्मा जी का जीवन चल रहा है, अदिति हमेशा रहेंगी। और वैसे भी वामन देव का जो आविर्भाव था वो सतयुग में था, और ये है द्वापर युग। तो भगवान सतयुग में भी आए थे और यहाँ भी आए हुए हैं। सतयुग में दो बार आए और यहाँ पर द्वापर में आए, लेकिन अदिति जैसा कि बलदेव प्रभु ने कहा आज भी अदिति हैं, ऐसा बात नहीं कश्यप मुनि हैं, अदिति हैं। और उतना ही नहीं, वो ऋषि लोग भी हैं, सृष्टि के समय जो सप्त ऋषि आते हैं वो लोग हैं, आज भी हैं। तो दैट्स व्हाट दे सेड, सेम थिंग। और कोई प्रश्न? हाँ बोलो जल्दी, अब प्रसाद भूख लग गया।
हरि बोल। हरे कृष्ण प्रभु जी, आपने बताया कि भगवान श्री कृष्ण जो 64 कला से आविर्भाव होते हैं, तो 64 कला क्या क्या है, मेरा क्वेश्चन है।
अभी मैं बताऊंगा, बाद में बताऊंगा, मुझे भी अभी याद नहीं, देखना पड़ेगा। और विष्णु के पास दे दो, कोई लड़का पूछेगा, ये सब टेक्निकल प्रश्न पूछ रहे हैं।
हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, हमारे एक मित्र है, उसके मम्मी पापा नहीं है, कोई नहीं है घर में, और वो अकेला है।
तो उसको बोलो भगत बन जाओ।
नहीं नहीं, अभी पूरा नहीं हुआ प्रश्न था। तो उससे जब भी मिलने जाते थे वो हंस के बात कर देता था हमसे, हंस के बात। तो हम सोचे बड़ा खुश रहता है। एक दिन अचानक गए तो वो दुखी था, रो रहा था, और जब गेट खड़खड़ाया देखा सांस से रो रहा था, बाहर खोला, क्या हुआ? नहीं कुछ नहीं, वो खुश है, खुश है। यही किस्सा सूट हो रहा है कृष्ण पर। कृष्ण कह रहे मैं अजन्मा हूँ, मम्मी बाबा नहीं उनके भी, और वो उन्होंने सबसे पहले ब्रह्मा जी को बताया कि मैं आत्मा रहा हूँ, वेदों का ज्ञान तो उन्होंने बताया, ब्रह्मा जी ने मान लिया। क्या पता कृष्ण भी दुखी रहते हो, वो हमें ना बताते हूँ इसलिए, ताकि हम दुखी ना हो जाएं। ऐसा बोध भी सकता है, क्योंकि गुणों में समान है ना भगवान से हम।
विष्णु बताओ क्या वो भाई प्रश्न क्या है, मैं समझ में आता
है। यही तो कि भगवान ये कह रहे आत्मा राम है, वेदों को, वेदों में सबसे पहले वेदों का ज्ञान ब्रह्मा जी को दिया, उनके अलावा तो कोई जान नहीं था भगवान के अलावा ये ज्ञान, तो ब्रह्मा जी ने मान लिया कि भगवान आत्मा राम है, और वो शायद हमको ना बताते हो ऐसा, क्योंकि उनके भी मम्मी पापा नहीं है, वो अजन्मा है।
समझा नहीं, समझ नहीं आ रहा क्या बोल रहा है, दूर से बोलो।
जी वो कहना चाहते हैं कि भगवान भी तो दुखी हो सकते हैं, लेकिन दिखा नहीं रहे कि मैं दुखी हूँ। जैसे उन्होंने एग्जांपल दिया कि वो बच्चा दुखी था लेकिन बता रहा था कि मैं दुखी नहीं हूँ, तो वो ब्रह्मा जी को बता दिया कि मैं तो अजन्मा हूँ, मैं वेदों का ज्ञाता हूँ, सब कुछ हूँ, तो ब्रह्मा जी ने भी मान लिया होगा कि चलो भाई ठीक है, बोल रहे तो मान लेते, लेकिन भगवान भी तो दुखी हो सकते, ऐसा वो बोल रहे हैं।
भगवान तो दुखी है, हम लोग इतने दुष्ट हैं, उनका भजन नहीं करते हैं, इसलिए भगवान दुखी है। हम भजन करना सुखी कर दें, कौन बाप सुखी होगा जब देखेगा कि हमारा बेटा बदमाश हो गया है? बाप देखना चाहता है कि बेटा अच्छा जेंटलमैन बने, तो भगवान देखना चाहते हैं कि हम लोग अच्छे इंसान बने। भगवान इसलिए बार बार आते हैं, भक्तों को भेजते हैं, उपदेश देते हैं, अपने पास बुलाते हैं कि तू आ जाओ, कहाँ पड़ा हुआ है यहाँ पर। लेकिन हम लोग मूर्ख हैं, तो भगवान दुखी हैं हम लोगों को देख करके, सही में। और जो भजन करने लगता है और भजन करने के बाद भी बदमाशी करता है तो उससे भगवान और ज्यादा दुखी हो जाते हैं।
यही कारण है, ये और भी तो हो सकता है, क्योंकि वो लड़के से पूछा था तो वो कह रहा था,
बात कुछ भी समझ नहीं था, दूर से बोलो थोड़ा
दूर से, तो उससे पूछा तुम क्यों दुखी, तुम रो रहे थे, वो बता नहीं रहा था, जबरदस्ती पूछा क्यों दुखी हो, क्यों रो रहे, तो वो कह रहा था अब तुम्हें पता है मेरा कोई नहीं है, मम्मी पापा नहीं, तो कभी कभी दुख हो जाता है, तो भगवान भी का मम्मी पापा नहीं, क्या भगवान के मम्मी पापा नहीं है, इसलिए थोड़ा उससे भी दुखी होते हो,
और कभी कभी बच्चा बदमाश है तभी बाप रोते हैं,
हाँ ये भी एक कारण है,
हाँ तो भगवान रोते हैं कि हम लोग बदमाश हैं,
वो भी तो हो सकता है, शायद उससे ज्यादा रोते हो, हम तो आ ही जाएंगे,
रो ही रहे हैं, तो भक्तों का काम है कि उनका रुलाई बंद कराए, जाओ प्रचार करो,
हाँ ठीक है
ठीक है
ठीक है।
दामोदर चेतन जी वन
चेतन जी।